أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستو السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے کچھ پروگرام سے نماز اور اس سے سمبندھت مسئلوں کے بارے میں بات چیت کو آرمبھ کیا تھا. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں وہ واجبات نماز جو رکن ہیں اور جن کے جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑ دینے پر نماز باطل ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بات چیت کو اپنی سماپتی تک پہنچایا تھا, یعنی وہاں پر ہماری وہ بات چیت سماپت ہو چکی تھی. اب ہم اپنے آج کے پروگرام میں اس بات چیت کو آرمبھ کریں گے جس میں واجبات نماز تو ہیں لیکن وہ رکن نہیں ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے قرآت اور اس سے سمبندھت مسئلے. آج اگر ہم اپنے اس پروگرام کا شیرشک بیان کرنا چاہیں تو آج ہمارے اس پروگرام کا شیرشک ہوگا قرآت. قرآت سے سمبندھت کچھ مسئلے ہیں. قرآت سب سے پہلے پرشن یہ اٹھتا ہے قرآت کہتے کس چیز کو ہیں. تو نماز میں سورہ الحمد, اس کے بعد کا سورہ, تسبیحات اربعہ اور اس پرکار کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو قرآت کہا جاتا ہے جن کو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. جب انسان یومیہ نماز یا پنجگانہ نماز یا روزانہ کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں جب پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے انیواریہ یہ ہے, واجب یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی اور دوسری رکعت نماز میں سورہ الحمد پڑھے اور اس کے اتیرکت پورے قرآن میں سے کوئی بھی ایک سورہ پورے روپ سے پڑھے. یہاں پر جو ہم نے کہا پورے قرآن میں سے کوئی بھی ایک سورہ, یہاں پر آگے کچھ نوٹس ہیں جو ہم اپنے اگلے مسئلے بیان کریں گے تاکہ یہ بات اسپشٹ رہے. تو واجب یہ ہے کہ ایک سورہ حمد پڑھے, اس کے اتیرکت کوئی ایک پورا سورہ پڑھے, یہ اس کے لیے آوشیک ہے. اور تیسری اور چوتھی رکعت نماز میں جب انسان نمازی اپنی تیسری اور چوتھی رکعت میں پہنچا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو وہ کہ سورہ حمد پڑھے, صرف سورہ حمد, اس کے اتیرکت کوئی دوسرا سورہ پڑھنے کی آوشیکتا نہیں ہے بلکہ نہیں پڑھا جائے گا, یا تسبیحات اربعہ پڑھے. تسبیحات اربعہ کیا ہیں اس کے لیے آپ توضیح المثال یا اس پرکار کی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ کو اسپشٹ روپ سے لکھا ہوا مل جائے گا. اور اس میں جو ہے یہ ہے کہ تسبیحات اربعہ یا تین مرتبہ پڑھے یا کم سے کم ایک مرتبہ پڑھے. یہاں پر ہمارے مجتہدین اور فقہا کے فتوے الگ الگ ہیں, وبھن پرکار کے فتوے پائے جاتے ہیں, لہٰذا آوشیک یہ ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مجتہد کہے کم سے کم تین بار, کوئی یہ کہے کم سے کم ایک مرتبہ بھی کافی ہو سکتا ہے. قرآت کے مسئلے میں ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے اتیرکت کوئی ایک پورا سورہ پڑھنا آوشیک ہے, لیکن یہاں پر دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی جان بوجھ کر جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے قرآن کے ان چار سوروں میں سے کوئی ایک سورہ پڑھ لے جس میں آیت سجدہ پائی جاتی ہے, جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے, تو اگر جان بوجھ کے اس نے پڑھا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی, نماز صحیح نہیں ہے, اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. وہ سورے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سورہ سورہ فصلت ہے, اس کے بعد سورہ سجدہ ہے, اور سورہ نجم اور سورہ علق ہے. یہ قرآن کے وہ چار سورے ہیں جن کے اندر آیت سجدہ پائی جاتی ہے, اور اس کر اس آیت کو پڑھا جائے تو سجدہ ترنت کرنا انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے. اگر انہی چار سوروں کو کوئی نمازی اپنی نماز میں پڑھ رہا ہے جانتے بوجھتے تو اس کی نماز باطل ہوگی. اور نماز میں جیسے کہ ہم نے اوپر بتایا تھا کہ کوئی بھی پورا سورہ, تو یہاں پر اس مسئلے کی پورتی کی جا رہی ہے کہ نماز میں کچھ سورے ایسے ہیں جن کو اگرچہ قرآن میں جس سمے لکھا گیا ہے ان کو ایک سورہ کہا گیا ہے, لیکن اگر ان کو نماز میں دیکھا جائے تو ان کو پورا سورہ نہیں مانا جاتا ہے. جیسے سورہ فیل اور سورہ الاف, अगर सूरह अलहम्द के बाद कोई इंसान सूरह फील या सूरह इलाफ में से कोई एक सूरह पढ़े तो इसको पूरा सूरह नहीं कहा जाएगा, बल्कि आवश्यक यह है कि अगर सूरह फील पढ़ा है तो सूरह इलाफ को भी पढ़े। इसी तरह सूरह जुहा और सूरह अलब नशरा, अगर इनमें से कोई एक सूरह पढ़ा जा रहा है तो उसको पूर्ण सूरह नहीं कहा जाएगा, बल्कि आवश्यक यह है कि इंसान अगर अलम नशरा पढ़ रहा है तो सूरह जुहा भी पढ़े, अगर जुहा पढ़ रहा है तो अलम नशरा भी पढ़े, या सूरह फील पढ़ रहा है तो सूरह इलाफ भी पढ़े। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक सूरह पढ़ इन दोनों को सूरह को पढ़ रहा है नमाज़ में, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा ना हो कि अगर सूरह फील पढ़ना शुरू किया तो उसके फ़ौरन बाद सूरह इलाफ शुरू कर देना। जो बिस्मिल्लाह बीच में है उस बिस्मिल्लाह को पढ़ना अनिवार्य है और ज़रूरी है, अगर बिस्मिल्लाह के बिना पढ़ा जाए तो उसको पूर्ण सूरह नहीं कहा जाएगा। और इसके बाद जो बात आती है कि वो ये है कि जब इंसान दूसरी और तीसरी रकात में पहुंचा है, यानी अगर मग़रिब की नमाज़ है तो अपनी तीसरी रकात में, अगर चार रकती नमाज है तो अपनी तीसरी या चौथी नमाज में है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि जो तस्बीहात अरबा का पढ़ रहा है वो धीमी आवाज़ में पढ़े, या अगर तस्बीहात अरबा के स्थान पे सूरह हम्द पढ़ रहा है तो उसको धीमी आवाज़ में पढ़े। और इसमें एक बात ये भी है कि अगर सूरह हम्द पढ़ रहा है तो उससे पहले, चूँकि सूरह हम्द से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना अनिवार्य है, बिना बिस्मिल्लाह के सूर्य को पूर्ण नहीं माना जाएगा, तो आवश्यक ये है कि उस बिस्मिल्लाह को भी धीरे से पढ़ा जाए। उसके अतिरिक्त जो मसले हो सकते हैं, कब इंसान को नमाज़ तेज़ पढ़ना है, कब इंसान को धीमे पढ़ना है, तो इसमें मसले महिला और पुरुष के एतबार से अलग अलग हैं। जैसे जोहर और असर की नमाज़ अगर है तो चाहे वो पढ़ने वाला पुरुष हो या पढ़ने वाली महिला हो, दोनों को धीमी आवाज़ में नमाज़ पढ़नी होगी। ऐसे ही मगरिब और इशा और सुबह, ये जो नमाज़ें हैं इसमें महिला और पुरुष के एतबार से अलग अलग मसले होते हैं। हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर पढ़ने वाला पुरुष है तो उसको पहली दो रकतें, यानी मगरिब और इशा की पहली दो रकतें और सुबह की दोनों रकतें, तेज़ आवाज़ में पढ़नी होगी, यानी बुलंद आवाज़ में पढ़नी होगी। इसका मतलब ये नहीं चिल्ला के पढ़ना, बल्कि एक नॉर्मल जो आवाज़ होती है उस आवाज़ में पढ़ना होगा। लेकिन अगर पढ़ने वाली महिला है तो यहाँ पर ये हमारे फुकहा कहते हैं कि अगर कोई नामहरम उसकी आवाज़ को नहीं सुनता है तो वो तेज़ आवाज़ में पढ़ सकती है, लेकिन अगर सुनने वाला नामहरम मौजूद हो, जैसे कोई मेहमान आया हुआ हो घर में और तब नमाज़ पढ़ना हो, तो उसके लिए अच्छा ये है, बेहतर ये है कि वो नमाज़ को धीरे पढ़े और तेज़ आवाज़ पे ना पढ़े। यहाँ पर इसके बाद जो मसला निकल कर आता है वो मसला ये है कि अगर कोई इंसान जानबूझकर मसले को जानते हुए, उसको पता हो, जैसे जोहर की नमाज़ है उसको पता था कि जोहर की नमाज़ में एक पुरुष को पहली दो रकतों में धीमे सूरह हम्द और दूसरा सूरह पढ़ना था, या असर की नमाज़ में धीमे पढ़ना था, अगर जानते बूझते उसने धीमी की जगह पर तेज़ आवाज़ में पढ़ा या तेज़ आवाज़ की जगह पर धीमे में पढ़ा तो उसकी नमाज़ बातिल है। लेकिन अगर भूले से पढ़ जाए या उसको मसले का ज्ञान ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि हमारे फुकहा ये कहते हैं, इस्लाम ये कहता है कि जोहर और असर की नमाज़ में पहली दो रकतों में धीमे पढ़ना है, या मगरिब और इशा और सुबह की नमाज़ों में पहली दो रकतों में तेज़ें पढ़ना है, अगर उसको मसले का ज्ञान ही नहीं था तब उसने धीमे को तेज़ या तेज़ को धीमे कर दिया है तो उसकी नमाज़ पर कोई आपत्ति नहीं होगी, उसकी नमाज़ सही रहेगी। लेकिन अगर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो उसकी नमाज़ बातिल है। जो नमाज़ पढ़ रहा है, कि कभी कभी ऐसा होता है नमाज़ पढ़ना शुरू किया उसने, मान लीजिए मगरिब की नमाज़ से उसने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, अभी नमाज के कुछ ही भाग पढ़ा था कि उसको एकदम से समझ में आया, ए हम तो जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो मगरिब की नमाज़ है, हमको बुलंद आवाज़ में यहाँ पर हम्द और सूरह को पढ़ना था, वो धीरे धीरे पढ़ रहा था, तो ऐसे समय पर क्या करेगा? यानी नमाज के बीच में उसको ज्ञात हो गया, पता चल गया कि उसने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर जैसे ही उसको इस बात का इल्म हो जाए, जैसे ही उसको इस बात का पता चल जाए कि उसने जो पढ़ रहा था गलत पढ़ रहा था, उसको तेज़ आवाज़ में पढ़ रहा था लेकिन धीमे पढ़ रहा था, तो जैसे ही पता चलेगा उसके बाद से उसको वैसे ही करना होगा। यानी अगर सूरह हम्द पढ़ चुका था, दूसरा सूरह पढ़ रहा था और धीमी आवाज़ में मगरिब की पहली रकतें पढ़ रहा था, तो जैसे ही उसको याद आए वैसे ही वो तेज़ आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन वो चीज़ें जो पढ़ चुका है, जैसे अगर उसकी दो दो तीन आयतें पढ़ चुका है या सूरह हम्द पढ़ चुका है, उसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे से ही अगर अपनी इस भूल को सुधार ले तो उसकी नमाज़ सही होगी और उसकी नमाज़ के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पर हमारे फुकहा नमाज के संबंध में, जैसा कि इस्लाम ने भी नमाज के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा है, हमारे फुकहा भी ये कहते हैं कि इंसान एक नमाजी के लिए, एक मुसलमान के लिए वाजिब ये है कि वो नमाज से संबंधित मसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करे और नमाज को सीखे, जितना संभव हो सके सीखने का प्रयत्न करे। लेकिन अगर कोई इंसान किसी भी अवस्था में नहीं सीख सकता है, यानी उसके अंदर इतनी योग्यता ही नहीं है किसी प्रकार भी नमाज को सीख सके, तो हमारे फुकहा ये कहते हैं चूँकि नमाज किसी भी समय छोड़ी नहीं जा सकती है, लिहाजा अगर कोई इंसान नहीं सीख सकता है तो जितना उसको आता है, जिस प्रकार भी आता है, उसको चाहिए उसी एतबार से उसी मात्रा भर पढ़े। और अगर फिर भी नहीं पढ़ सकता है तो हमारे फुकहा यहीं पर कहते हैं कि एहतियात मुस्तहब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो सही नमाज नहीं जानता है और नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए एहतियात मुस्तहब ये है कि वो व्यक्ति जमात से नमाज़ पढ़े, ये मस्जिद में जाए या ऐसे स्थान पर जाए जहाँ नमाज जमात से हो रही हो, और उसको जमात से नमाज़ पढ़े ताकि उसको विश्वास हो कि उसकी नमाज जो थी वो सही थी। इसी प्रकार नमाज में एहतियात मुस्तहब ये है कि वक्फ बे हरकत और वस्ल बे सुकून ना हो। इसका क्या मतलब है, इसमें घबराने वाली बात नहीं, हम आपके सामने स्पष्ट करते हैं। यानी जब इंसान अपनी सांस तोड़ रहा है, तो सांस जब तोड़ रहा है तो उसकी समाप्ति हरकत के ऊपर ना हो, ज़बर ज़ेर पेश के ऊपर ना हो, और अगर किसी दूसरे अक्षर से मिला रहा है तो उसकी मिलाने की चीज़ साकिन के ऊपर ना हो, जैसे मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ, इस प्रकार ना हो ताकि मसला स्पष्ट हो जाए। जैसे अगर वक्फ बे हरकत, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, जैसे इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जैसे कोई इंसान नमाज में खड़ा हुआ और अल्हम्द पढ़ना चाहता है तो इस प्रकार ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीना, यानी आलमीना नून के ऊपर जो ज़बर है वहाँ पर ना रुके। इसी प्रकार मिलाए बिना साकिन के साथ दूसरी आयतें मिलाए ना, जैसे इस प्रकार ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, इस प्रकार ना मिलाए, यानी साकिन जहाँ पर हम रोक रहे हैं वहाँ पर साकिन पे रुके। यानी इस पढ़ने का सही तरीका ये होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर हमको रुकना है, अगर नहीं रुकना है तो इस तरह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, इस प्रकार। लेकिन अगर रुक के आगे बढ़ना है तो इस तरह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो तरीका हुआ जो पढ़ना चाहिए। इसलिए जिस समय इंसान रुकना चाहता है उस समय वो हरकत के ऊपर ना रुके, और जिस समय अगली आयत से मिलाना चाहता है तो पहले वाली आयत को साकिन न करे। इसी प्रकार मसले में यह है कि जो इंसान तीसरी और चौथी रकत नमाज में है, यानी वो अगर चार रकती नमाज है तो तीसरी और चौथी रकत, अगर तीन रकती नमाज है तो तीसरी रकत में, तो उसके लिए आवश्यक यह है कि अगर सूरह अलहम्द पढ़ रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ सूरह अलहम्द पढ़े, उसके अलावा कोई दूसरा सूरह ना पढ़े। यानी अगर तीसरी या चौथी रकात में है तो अगर तस्बीहात अरबा नहीं पढ़ना चाहता है, उसको याद नहीं पढ़ना चाहता है, तो अलहम्द का सिर्फ़ और सिर्फ अलहम्द का सूरह पढ़े और उसके बाद अपना रुकू और सजदा करे, उसके बाद दूसरा सूरह नहीं पढ़ना है। तो ये वो अहकाम थे जो क़रा से संबंधित, कुछ अहकाम जो हमने आपके सामने बयान किए। इसके अलावा क़रा से संबंधित कुछ और भी अहकाम हैं, अपने हम जिन अहकाम को अपने दूसरे प्रोग्राम में आपके सामने बयान करेंगे। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।